ओम शांति। क्लास में आने से पहले बाबा के वे महावाक्य जो इस संदर्भ में चले हुए हैं, ड्रामानुसार मेरे सामने लिखित रूप में वो आ गए और उसका मैंने आज सवेरे जब से मैं आई हूं तब से उन्हें पढ़ा और अध्ययन किया, नोट्स बनाए, क्योंकि बाबा के महावाक्यों की अपनी ही शान होती है जिसे हम बच्चे स्टडी करके अपने शब्दों में बोलते हैं, लेकिन जो बाबा के महावाक्यों के प्रभाव हैं वो व्यक्ति के तो नहीं होते। समय की सीमा है इसलिए वे सब बातें जहां तक हो सके बताने का प्रयास करूंगी। अगर हम सब अपने ब्राह्मण जन्म को देखें तो आते सार बाबा से हमको दो वरदान उपलब्ध होते हैं। कौन से? सिंपल है, पवित्र बनो और योगी बनो। और जब हम बच्चे पवित्रता की बात को अपनाते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये पवित्रता मात्र ब्रह्मचर्य के रूप से नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत हैं, परंतु इसके साथ जो बाबा कहते हैं वो है ब्रह्मचर्य। और बाबा जब पवित्रता की परिभाषा देते हैं तो उसको बहुत गहन रूप से हम बच्चों को समझाते हैं। एक छोटी सी निशानी है, अगर आपको याद होगा तो शुरू में जब हम लोग स्लोगन लिखा करते थे तो वो स्लोगन हमारी हर प्रदर्शनी में हर सेंटर पर हुआ करता था, याद है? जो पुराने हैं वो बताएंगे या नए भी बता सकते हैं। वो स्लोगन सदा और आज भी वो स्लोगन उतना ही ताजा है जितना आज से 60 साल पहले था। कौन सा है? माधव भाई, पवित्रता सुख शांति की जननी, एक्यूरेट। बाबा ने ये स्लोगन हमें आदि में दिया और आज भी इस स्लोगन का उतना ही महत्व है। पवित्रता की धारणा कहां तक है उसकी परख और पहचान हमारे सुख और शांति से है। अगर मन के अंदर मेरे चैन है, आनंद स्वरूप स्थिति है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति है, तो ये निशानी है कि मेरा मन पवित्र है। बाबा के महावाक्य है, वह मन जो तनावग्रस्त वह मन जिसमें हलचल है, वह मन जिसमें कंफ्यूजन है, वह मन जिसके अंदर क्यों क्या के प्रश्न है, वह मन सुख और चैन से नहीं रह सकता। हमारी यादगार विष्णु जी शेष शैया पर है, खीर सागर में है और बड़े आराम से मनन चिंतन में तल्लीन है। तो बाबा ने हम बच्चों को जो ये रूहानी पर्सनालिटी पवित्रता के रूप से दी है, उसकी निशानी है। बाबा कहते आप आत्मा लवलीन स्थिति में होंगे, वो तल्लीन है लेकिन आप लवलीन स्थिति में होंगे। जो बुद्धि है, कौन सी बुद्धि से हम बाबा से मिलन कर सकते हैं? पवित्र बुद्धि से। अगर बुद्धि मेरी शुद्ध नहीं, बुद्धि मेरी निर्बल है, बुद्धि में मेरे भिन्न भिन्न प्रकार की तूफानी बातें हैं, वो बुद्धि बाबा से क्या मिलन मनाएगी? बाप के मिलन का अनुभव पवित्र बुद्धि के द्वारा होता है। तब बाबा ने कहा तुम्हारे कर्मों में भी क्या दिखाई देगा? कर्मों में सर्व आत्माओं को प्राप्ति का अनुभव होगा। जो भी आपके संपर्क और संबंध में आएगा वो प्राप्ति का अनुभव करेगा। इसमें बाबा ने गहरी बात बताते हुए कहा कि अगर आप पवित्र हैं लेकिन आपके कर्मों के द्वारा, आपके संपर्क संबंध के द्वारा दूसरों को प्राप्ति का अनुभव नहीं होता, तो उसका एक कारण है। और वो बाबा ने बताया कि अन्य आत्मा जिसके संपर्क में आप हैं, जिसके साथ आप कर्म कर रहे हैं, उसे अनुभव नहीं हो रहा, माना उसकी कोई अपवित्रता का प्रभाव आपके ऊपर है। समझा आपने? ये गहरी बात है कि मैं जब पवित्र हूं तो मेरा रोल दाता विधाता वरदाता का है। मेरे द्वारा अनुभव लोगों को प्राप्ति का होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो उसका कारण कुछ तो होगा। और वो कारण बाबा ने कहा कि आप दूसरी आत्मा के कोई प्रकार के, चाहे वो अवगुण के रूप में हो, चाहे वो कमजोरी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, आकर्षण के रूप से हो, क्योंकि पवित्र आत्मा हदों के आकर्षण से परे होती है। हम पवित्र आत्माएं अगर हद के आकर्षण में हैं, लगाव बहुत दूर की बात है, आकर्षण अगर इतना भी है ना, तो बाबा ने कहा उसका अनुभव आप नहीं करा सके। जिसे बाबा कहता है कि बच्चे तुम लाइट तो बने लेकिन तुम सर्च लाइट नहीं बने। खुद को तो आपने किया लेकिन औरों तक प्रभाव क्यों नहीं गया? क्योंकि सर्च लाइट नहीं। इसलिए बाबा की अगर हम मुरली को देखें और आज दिन तक जिस बात के महत्व को रखा गया उसे हम देखें, तो हमारे दो टाइटल हैं। कौन से? हिज होलीनेस एंड हिज हाईनेस। डबल क्राउन है, डबल क्राउन है हमारा, होलीनेस का भी है और हाईनेस का भी है, प्रभा मंडल भी है और रत्न जड़ित ताज भी है। रत्न जड़ित ताज का आधार होलीनेस है। एक बार बाबा की मुरली चली थी कि बाबा तुम बच्चों को हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस देते हैं, लेकिन हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का आधार क्या है? होलीनेस। होलीनेस, वो होलीनेस क्या है जिसको बाबा कहते हैं तुम्हारे ब्राह्मण जन्म की फाउंडेशन है, जिसके लिए बाबा कहते 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने का आधार है, जिसके लिए कहते भारत इसी कारण से महान, आज दिन तक भारत की महानता है, जिसके लिए बाबा कहते जन्म तुम्हारा वैल्यूबल हो जाता है, हीरे तुल्य हो जाता है, पवित्रता है, जिसको बाबा कहते तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी है, पवित्रता है। अब ये पवित्रता उसको बाबा चेक कैसे करता है, इसको बताने से पूर्व मैं मनसा वाचा और कर्मणा इन तीनों स्तर की पवित्रता को लूंगी। पर्सनैलिटी, बाबा कहते हैं दुनिया में तो शरीर की पर्सनैलिटी की बात करते हैं और उसमें और ही देह और दैहिक वृत्ति में मनुष्य को ले आते हैं, और बाबा ने बहुत सुंदर कहा कि उनके गायन बुक में हो जाएगा लेकिन तुम्हारी पवित्रता का गायन किसमें है बताओ तो? किसमें है? शास्त्रों में है। आज दिन तक गायन है, है? नशा चढ़ता है, नशा चढ़ता है, हमारा गायन है, हाँ बजाओ ताली, इतना गायन है, यादगारें बनी हुई हैं। अभी रक्षाबंधन हमने मनाया, किस बात की यादगार? पवित्रता की यादगार। ये पवित्रता का बंधन सर्व बंधनों को तोड़ने वाला है, यही है ना, इसीलिए मनाते ना रक्षाबंधन। फिर इसका गायन आप देखो शास्त्रों में कितना भरपूर है, पवित्रता का गायन कितना है। अपने आदि और अनादि स्वरूप को देखो, अनादि स्वरूप में परम धाम निवासी, वहां पर ज्योति बिंदु आत्मा, लेकिन वहां पर भी हम सतो प्रधान सतयुगी आत्माएं और कलयुगी तमो प्रधान आत्माएं, दोनों की लाइट में अंतर होगा। कैसे पता लगेगा ये सतयुग वाली आत्मा है ये कलयुग वाली आत्मा है? एक बार गुलजार दादी से हम लोगों ने सवाल किया था, दादी आत्मा तो ज्योति बिंदु होती है, लाइट होती है, आपको कैसे पता लगता है कि ये आत्मा ज्यादा अच्छी है और ये थोड़ी गड़बड़ है, ये आत्मा ज्यादा पावरफुल है और ये थोड़ी गड़बड़ है? तो दादी ने कहा था कि उनके रंग से पता लगता है, रंग जो रंग माना ब्राइटनेस, उससे पता लगता है। जो आत्मा सतो प्रधान होती है उसकी लाइट तेज होती है, और जो आत्मा तमो प्रधान होती है उसकी लाइट राख के कलर की होती है, राख डल होती है ना, ऐश कलर ऐसी होती है। तो हमारी तो अनादि स्वरूप में भी परम धाम में अलग पहचान है, है अलग पहचान। हाँ, वरदान रूप में पवित्रता के सागर के बच्चे, पवित्रता का मंत्र देने वाले बाबा के बच्चे, हमारी पहचान ही निराली है। तो परम धाम में भी हम ऐसे स्वरूप में होंगे, अनादि स्वरूप में। और दूसरा, आ जाओ बाबा ने कहा आदि काल में, आदि काल में अपनी पर्सनैलिटी को इमर्ज करो। बाबा ने उस मुरली में पूरा चक्र हमें घुमाया, और मैं भी बाबा की उस बात को आपके साथ रिपीट कर रही हूँ। जरा कल्पना तो करो, आप सतयुग में हो, देवता स्वरूप में हो, अपनी पर्सनैलिटी को इमर्ज तो करिए। आप कैसे देवता हैं? कर रहे हैं सब? कर रहे हैं? करो करो, बहुत अच्छा लगेगा। करो, सब लोग देवता स्वरूप को अपने इमर्ज करो। कितने ब्यूटीफुल हैं, आ रहे हैं? कितने ब्यूटीफुल हैं, कितने सुंदर हैं। बाबा के शब्द हैं ये। कितने सुंदर लग रहे हैं, क्या जबरदस्त पर्सनैलिटी हर एक की है। इमर्ज करो, ये पर्सनैलिटी किस आधार से? मनसा की शुद्धता और पवित्रता के आधार से। अब आ जाओ मध्य काल में, मध्य काल में अब हमारी पूजा हो रही है। कैसी पूजा हो रही है? इमर्ज करो, इमर्ज करो वो संस्कार। हमारी पूजा हो रही है, विधिवत हो रही है, विधि पूर्वक पूजा हो रही है। 56 प्रकार के भोग स्वीकार कराए जा रहे हैं। कल्पना तो करो, मेरे मंदिर में आकर चोर भी भगत बन जाता है, कल्पना तो करो। कितना उज्जवल मध्य स्वरूप का हमारा पूज्य स्वरूप है। अब आ जाओ अंत में, कलयुग में नहीं जाना, ब्राह्मण, ब्राह्मण ये जन्म कितना दुर्लभ है। और ये जन्म ऑर्डिनरी जन्म से न्यारा कैसे हुआ? पवित्रता के आधार से। और आज भी मुझ ब्राह्मण के नाम से नामधारी ब्राह्मण कमाई कर रहे हैं, ठीक है? नामधारी ब्राह्मण की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन असली ब्राह्मण कौन? मैं। तो बाबा ने कहा, सोचो तो सही, आपके नाम के आधार से, आप ब्राह्मण आत्मा के आधार से नामधारी ब्राह्मण अपनी कमाई आज दिन तक भी कर रहे हैं, तो कितना पवित्रता का महत्व है। तीनों कालों में अनादि स्वरूप भी ऐसा, आदि स्वरूप भी ऐसा, मध्य स्वरूप भी ऐसा, और अंतिम स्वरूप भी जबरदस्त। अब बाबा कहता है, ऐसी आत्मा आप केवल व्यक्ति परिवर्तन नहीं करते हो, लेकिन इस शक्ति के आधार से प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो, है नशा? बोलो, है नशा? प्रकृति का भी परिवर्तन हम बच्चे पवित्रता के आधार से करते हैं, पवित्रता की पर्सनैलिटी के आधार से करते हैं। यादगार है? यादगार कौन सा यादगार? सबके तो नहीं होते, एक आधा ही यादगार सबका दिखाया जाता है। वो कौन सा यादगार है? श्री कृष्ण, जिसका जब जन्म होता है तो क्या दिखाते हैं, सारे दरबान सो गए, सो गए। फिर उसको लेके गए तो यमुना चढ़ी हुई थी, लेकिन मूसलाधार वर्षा थी, लेकिन जो ही श्री कृष्ण को लेके जाते हैं यमुना ठंडी हो जाती है, वर्षा बंद हो जाती है, और वो जो सर्प था वो छत्र छाया बन करके बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। किसकी निशानी है? सत्युग में सांप होगा क्या? होगा सांप सत्युग में? सत्युग में कहीं ऐसे यमुना चढ़ेगी क्या? नहीं। ये कब की निशानी है? बोलो, एक आवाज में बोलो, कब की निशानी है? हमारी निशानी आज की है, ठीक है। इतना नशा हम बच्चों को चाहिए, बाबा से जो प्राप्ति हुई उसका इतना नशा हम प्रकृति को भी बदलने वाले हैं। प्रकृति के तत्वों की सेवा करने वाले हैं, और ये प्रकृति हमारी दुश्मन नहीं, ये प्रकृति हमारी मित्र और रक्षक बन जाती है। कितने मिसाल हैं, कितने ही मिसाल हैं। हमारी बहनें बताती हैं, बहन जी बाढ़ वहां तक आई लेकिन बाबा का घर बिल्कुल सुरक्षित रहा। अर्थक्वेक आया, वो ढह गया, वो ढह गया, बाबा का घर सुरक्षित रहा। कैसे? पवित्रता की आराधना से। अब बाबा कहता है, बच्चे ये पवित्रता ही तुम्हारी तपस्या है। तपस्या कोई बैठ करके योग लगाने की बात नहीं है, लेकिन पवित्रता मेरी अटल अखंड अविनाशी, जो कभी खंडित न हो, कदापि खंडित न हो। इसके लिए बाबा युक्ति बताता है, बच्चे हठ योग से नहीं करो, मेहनत से नहीं करो, क्योंकि कोई भी चीज मेहनत से की जाने वाली सदाकालीन नहीं होती। और बाबा ने उस मुरली में सदा का अर्थ बताया है। सदा माना बाबा कहता है जीवन भर, जीवन भर। द्वापर युग में ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो बताए विश्वामित्र के आगे कितने साल, 12 साल उसने तपस्या की विश्वामित्र ने, एक ही मेनका आई और उसकी तपस्या खत्म। ये है हठ योगियों की, द्वापर युगी आत्माओं की। लेकिन हम बाबा के डायरेक्ट बच्चे, जिनका जन्म बाबा के मुखारविंद से, वरदानों से हुआ, वरदान दिया, हमारी पवित्रता अटल अखंड अविनाशी, कोई उसे हिला न सके, कोई उस पर किसी प्रकार का प्रभाव डाल न सके। एक दिन बाबा ने सबके पेपर चेक किए और बाबा ने कहा, आज मैं किस रूप से देख रहा हूं, हर बच्चे का चार्ट मनसा वाचा कर्मणा तीनों का बाबा ने चेक किया। बाबा की चेकिंग क्या है मैं रिजल्ट नहीं सुनाऊंगी, लेकिन बाबा किस बात को चेक करते हैं वो मैं आपको सुनाऊंगी, क्योंकि वो आपके काम की चीज और वो हमको फोकस में रखना है। बाबा कहते, मैं ये चेक करता हूं कि जिस दिन से इस बच्चे का जन्म हुआ उस दिन से मनसा में संकल्प में पवित्रता खंडित तो नहीं हुई मनसा में। बाबा बोले क्या कारण है कोई आत्माएं 8 में आती हैं, कोई 108 में, कोई 16108 में, क्या कारण है? प्यारे मीठे भाई और बहनों, बाबा का पेपर चेक करना बहुत बारीक, बहुत सूक्ष्म। मनसा में भी संकल्प ना आए, जब से जन्म लिया हर एक चेक करे। और यदि कहीं कोई कमजोरी है तो आज प्रतिज्ञा करें, आज मेरा नया जन्म है, आज मेरी जन्माष्टमी है, आज के बाद ये कभी नहीं होगा। क्योंकि बाबा जो शिक्षक है वो इतना गहराई से हमारी चेकिंग करता है, वाचा में बाबा ने कहा मैं 2 बातें देखता हूं, क्या वाचा की पवित्रता, वाचा की पवित्रता है क्या सदा सबको शक्ति उमंग खुशी देने वाले मेरे बोल हैं, अगर मेरे बोल में कहीं किसी की खुशी खत्म करते हैं, हिम्मत उमंग उत्साह को खत्म करते हैं, तो वो वाणी की पवित्रता नहीं है। वाणी की पवित्रता की पराकाष्ठा है वरदान। वरदान लंबे चौड़े नहीं होते, वरदान 2-2 शब्दों के होते हैं। इस पर बाबा ने कहा वाणी की पवित्रता होगी तो क्वांटिटी कम होगी और क्वालिटी ज्यादा होगी। वाणी बहुत बोलते हैं ना, बोलते रहते हैं कभी, जिसको बाबा कहता व्यर्थ। तो वाणी की पवित्रता समर्थ बोल और क्वालिटी वाले बोल, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। दूसरी बात जो बाबा ने कही वो बाबा ने कहा मनसा में स्वच्छता और वाणी में सत्यता। स्वच्छता का आधार है निर्मलता। अगर मन निर्मल है, मल कहते गंदगी को, अगर मन मेरा निर्मल है न अपने संस्कारों की गंदगी है, न ही किसी अन्य के संस्कार की गंदगी है। स्वच्छ और वाणी में सत्यता, बाबा ने बहुत सुंदर, शायद वो मुरली चल चुकी है जिसमें बाबा ने कहा बच्चे कैसे वकील बन जाते हैं, याद है मुरली? कोई बात बच्चों के नोटिस पर दो तो स्वीकार नहीं करते हैं, बाबा ये बात ऐसे थी ना इसलिए ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया ना इसलिए ऐसा हुआ। बाबा कहते वकील क्यों बनते हो? वकील माना झूठा, वकालत क्यों करते हो? बाबा वकील बनना तो नहीं सिखाता, बाबा जज बनना सिखाता है। तो सत्यता, सत्यता स्वयं में एक तपस्या है। और तीसरा बाबा ने कहा कि कर्म में मैं कैसे चेक करता हूं, क्या कभी ये अनुभव अप्राप्ति का होता है? अगर अप्राप्ति का अनुभव होता है, अप्राप्ति का, तो बाबा के महावाक्य हैं कि ब्राह्मणों के खजाने में कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है। ब्राह्मणों का खजाना देवताओं के खजाने से ज्यादा भरपूर है, स्वीकार करते हैं ना इस बात को? ब्राह्मणों का खजाना देवताओं से अधिक भरपूर है, लेकिन रॉयल्टी की कमी के कारण दूसरों को देखने के कारण अप्राप्ति का अनुभव जो होता है, बाबा ने कहा ये भी परसेंटेज में कमी पड़ जाती है। तब बाबा ने दो मिसाल हमारे सामने प्रस्तुत किए। बाबा कहता बच्चे ये बताओ, माया आई फिर मैं जीतूं, फिर माया आए फिर जीतूं, जीत तो लेती हूं। ध्यान से सुनिएगा, बात आती है, माया आती है, मैं ज्ञान और योग के आधार से जीत लेती हूं। ये राइट है? राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है तो हारूं क्या? रॉन्ग क्यों है भाई? मैं जीत रही हूं ना, तो रॉन्ग क्यों हूं? माया आती है, मैं ज्ञान और योग अप्लाई करके जीत लेती हूं, तो रॉन्ग कहां से हो गई मैं? ये ठीक नहीं है, माया आती जीतती हूं रॉन्ग है। आप लोग कुछ ठीक ही कह रहे हो, क्योंकि बाबा ने बहुत सुंदर कहा। बाबा ने कहा कि बच्चे सदा काल के माया जीत के संस्कार बहु काल से चाहिए। माया आई जीता, फिर आई फिर जीता, तो धनुष बाण उठाना पड़ेगा। मंजूर है धनुष बाण उठाना? मंजूर है? पहले निशाना लगाओ, फिर तीर मारो, जीतो, इतनी मेहनत क्यों करो? इसको बाबा ने कहा है कि बच्चे मोटे मोटे रूप से चेकिंग मत करो पवित्रता की, कि मेरा किसी से लगाव नहीं है, मेरा किसी पर प्रभाव नहीं है, ना मुझसे कोई प्रभावित है, मैं कोई, मेरा कहीं झुकाव नहीं है। नहीं, बाबा ने चेतावनी दी है, ये मोटे मोटे रूप का है, और मोटे मोटे रूप से चेक करोगे तो मोटी मोटी चीज धनुष बाण उठाना पड़ेगा। सूक्ष्म रूप से चेक करो, और वो सूक्ष्म, बाबा ने कहा, मैं एक मिसाल से आपको एक्सप्लेन करती हूं। आप सब जानते हैं कि रावण सीता जी को लेने के लिए पंचवटी पर आया था, लकीर थी मर्यादा की लकीर थी, और उस लकीर को जब वो पार करता था तो उसको अग्नि नजर आती थी, वो पार नहीं कर सकता था। तो उसने क्या किया, साधु का वेश धारण किया, याद है, साधु का वेश धारण किया, और सीता जी उसे परख नहीं पाई, उसको रहम आया, और इस कारण उसका अपहरण हुआ। ये कहानी हमारी मोटे मोटे रूप में हम समझते हैं, नहीं मैं तो आज्ञा पालन कर रही हूं, मैं सारा कुछ ठीक कर रही हूं, मैं मर्यादा पर चल रही हूं, श्रीमत पर चल रही हूं, लेकिन ये जो परख शक्ति माया की है वो मेरे पास है। क्यों नहीं समझ में आया कि ये मायावी रूप है? उसका कारण था अटैचमेंट थी राम के साथ, और लक्ष्मण को भी इसलिए भेज दिया राम की अटैचमेंट के कारण, और माया को परख नहीं सके। इसलिए बाबा हम बच्चों को इन मन वचन कर्म की पवित्रता की गहराई के लिए बाबा ने एक अभ्यास बताया, और वो अभ्यास हम सब के लिए, जिसको हम कहते हैं ना, ऐसी दवा जो कि 100 बीमारियों की दवा है, वो अभ्यास वो है, और वो है अशरीरीपन का अभ्यास। शरीर में आना, शरीर से बाहर जाना, आना जाना। बाबा ने कहा कोई बच्चा नहीं कह सकता कि मुझे एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं मिलती, और बाबा ने चेतावनी दी कि यदि आप ये अभ्यास अभी नहीं करोगे और आप सोचोगे कि अंत में हो जाएगा, तो बाबा ने कहा ये कभी नहीं होगा। इसलिए ये अभ्यास अब हम लोगों को करना अति 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 अनिवार्य और आवश्यक। अब आइए, ये हमारी पर्सनालिटी है, ये प्योरिटी की पर्सनालिटी है हमारी। रॉयल्टी क्या है? हमारा फिर स्लोगन है, प्योरिटी इज रॉयल्टी, है ना? प्योरिटी इज रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल व्यक्ति कभी किसी की चीज पर आंख नहीं रखता। चाहे वो गुण हो चाहे वो अवगुण, किसी की भी चीज पर आंख नहीं रखता। अगर कोई कहता है ये इसके पास है मेरे पास भी हो तो वो रॉयल है या मंगता है, मंगता हो गया ना। दूसरा, कोई व्यक्ति अपना छोड़ रहा हो अवगुण, वो बेचारा अवगुण छोड़ने का प्रयास कर रहा है और मैं उसके अवगुण को उठा के उसका वर्णन कर रही हूं, तो बाबा कहता है गिरी हुई चीज को उठाना क्या ये राइट रॉयल्टी है? वो गिरी हुई है ना, वो फेंक रहा है और मैं उसे उठा रही हूं, वर्णन में ला रही हूं, रॉयल्टी तो नहीं कहेंगे ना। प्यूरिटी की रॉयल्टी क्या है? नैनों में संपन्नता दिखाई देगी, नैनों में संपन्नता दिखाई देगी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नैनो के द्वारा होता है। अगर नैन संपन्न है, वो संपन्नता नैन झलका रहे हैं लेकिन वो आत्मा की स्थिति है। प्यूरिटी की पर्सनैलिटी वाला इच्छा मात्रम अविद्या की रॉयल्टी वाला होता है। कोई इच्छाएं नहीं होती, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी वाला सदा साधक होता है। आप देखेंगे जितने रॉयल लोग होते हैं, कभी आपने उनको हलचल में देखा? हमारे श्री लक्ष्मी श्री नारायण को देखो कैसे खड़े हैं, रॉयल्टी रियल्टी है। रियलिटी माना अंदर की जो सच्चाई है वो रॉयल्टी। रॉयल व्यक्ति एकाग्र चित्त होता है। प्यूरिटी की रॉयल्टी एकाग्रता है। अगर मन और बुद्धि एकाग्र नहीं है तो चेक करने की जरूरत है। रॉयल व्यक्ति आसनधारी होता है। वो अपने आसन अपनी सीट बदलता नहीं। हमारा आसन कौन सा है? कमल आसन। और कमल आसन के दो अर्थ, एक पवित्र और दूसरा डिटैच्ड, अनासक्त। प्यारे भाई और बहनों, अनासक्त वृत्ति रॉयल्टी की पराकाष्ठा है। अनासक्त विधि भी है और उपलब्धि भी है, दोनों है। डिटैच, न्यारा, ये रॉयल्टी है। आज हम बच्चों को मीठा बाबा इतना प्यारा क्यों लगता? आज हमें गुलजार दादी चाहे कुछ बोले या न बोले इतनी अच्छी क्यों लगती? क्या कारण? न्यारा। आसक्ति प्यूरिटी की पर्सनैलिटी में व्यवधान है। व्यवधान समझते हैं ना? व्यवधान में ऑब्स्टिकल है, विघ्न है। वो आसक्ति किसी भी रूप से हो सकती है। इसलिए बाबा जो हमें अशरीरीपन का अभ्यास कहता है उसके पीछे अनासक्त वृत्ति समाई हुई। अगर शरीर से आसक्त होंगे, अपने संस्कारों से आसक्त होंगे, तो हम रॉयल नहीं बन सकते। रॉयल, ठीक है? इसके लिए बार बार स्मृति में लाओ, अपने आदि अनादि संस्कार है, मेरा स्वरूप है, उसे स्मृति में लाएंगे तो वो स्वरूप हमारा बनता जाएगा। वाणी पर अटेंशन हो, क्वांटिटी कम, क्वालिटी अच्छी। समय हुआ है, यहां समाप्त करती हूं। ओम शांति।